नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनैतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
There is an urgent need for us.
हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1,70,00,000,000 लोग रहते हैं जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न सिर्फ सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICARA के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों पर तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। यह टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी की कल शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। ये हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करने वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कहा है कि उड़ान योजना के अगले चरण का उद्देश्य 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी बढ़ाना और अगले 10 वर्ष में 4 करोड़ लोगों को यात्रा करने में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में आज उड़ान के अगले चरण पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि संशोधित योजना में व्यवहार्यता अंतर्निधि के लिए पात्रता का विस्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय विद्युत मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श के लिए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027 के मानदंडों का आज मसौदा जारी किया है। ये प्रस्तावित मानदंड 2027-28 से 2031-32 की अवधि के दौरान देश में बिक्री के लिए निर्मित या आयात किए जाने वाले M1 श्रेणी के यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्गिम के एडजबेस्टन में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से पराजित किया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।